नमस्कार, जनसत्ता वीकेंड पॉडकास्ट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी दुनिया की कहानियाँ। नाटक और सिनेमा जैसी प्रदर्शनकारी कलाओं के साथ प्रेमचंद्र का रिश्ता उनके जीते जी रसाई और खिंचाई वाला रहा। उन्होंने नाटक लिखे जो चलते नहीं, लेकिन बड़े कथाकार के नाते इज्जत से याद किए जाते हैं। फिर कथा लेखन के अपने उत्कर्ष काल में जब बोलती फिल्में आई ही थी, अजंता सीने स्टोन कंपनी के बुलावे पर फिल्म लेखन के लिए 8,000 रुपये मासिक वेतन पर 1932 में मुंबई गए। जाना मंजूर तो किया अपनी पत्रिकाओं के चलते भारी कर्ज की भरपाई के लिए, लेकिन इस नई और सशक्त विधा में अपने को व्यक्त करने का जज्बा भी कम ना था, पर सिर मुंडाते ही ओले पड़े। फिल्म के लिए लिखी पहली ही कहानी मिल मजदूर में निहित सामाजिक सरोकारों से फिल्मी व्यवसायिकता की पटी नहीं, लिहाजा संपादन के नाम पर कटनी छटनी हुई। प्रदर्शन को लेकर बवाल उठे, फिल्म बंद हो गई। इससे आहत होकर उन्होंने फिल्म मिल मजदूर को प्रेमचंद्र की हत्या कहा और सृजन और दुनियादारी के सारे मंसूबे छोड़ छाड़ कर बनारस लौट आए। यानी नाटक और फिल्म में प्रेमचंद्र की रुचि इतनी गहरी तो थी ही, या ये विधाएं उनके लिए इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि वो सक्रिय हुए बिना न रह सके। लेकिन इस सारी कवायद का मर्म ये है कि इन विधाओं की फितरत के साथ प्रेमचंद्र का रिश्ता इतना जहनी था कि वो खुद जो ना कर सके उनके कथाकार ने सहज ही कर दिया। इसके प्रमाण है साहित्य पर आधारित सिनेमा में प्रेमचंद्र की कहानियों उपन्यासों पर सर्वाधिक काम होना और इन्हीं की कथाओं के सर्वाधिक नाट्य रूपांतरण भी, जो सबके सब खासे लोकप्रिय भी हैं। 50 कहानियों पर नाटक और फिल्में बनी हैं तो सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि पर्दे पर उतरे हैं। गोदान कई भाषाओं में मंच पर तो 2 बार पर्दे पर आ चुका है। यानी नाटकों फिल्मों की दुनिया को ऐसी चुनौती देते हैं। कथाकार प्रेमचंद्र की बच नहीं पाते लोग, तभी तो सिनेमा के जगत सत्यजीत राय जैसे अहिंदी भाषी भी उनकी 2 कहानियों पर फिल्में बनाने से खुद को रोक ना सके। सीने संसार में प्रेमचंद्र पर हुए सारे कामों में राय की दोनों फिल्में अब तक मील का पत्थर साबित हुई हैं। सत्यजीत राय की शतरंज के खिलाड़ी में किसानों की संस्कृति थी ही नहीं, लखनवी संस्कृति और माहौल था, मगर सदृति में घास काटने, लकड़ी चीरने आदि के दृश्यों में पूर्वांचल सटीक उतरा है, मगर यहाँ भी पंजाबी के ही ओमपुरी और मराठी की स्मिता पाटिल भोजपुरी में रच बस ना सके, पर उन पात्रों की छाप छोड़ सके। तैयारी दिखती है। ओमपुरी ने दुनिया को ऐसा साधा कि सच के दुखिया पानी भरे। मोहन अगाशे और स्मिता भी बिल्कुल जचे। ये टीम जब काफ़ी नई थी, जिसे गजब का ढाल दिया सत्यजीत राय ने, मगर गुलजार ने राय साहब के दोनों कामों को नहीं छुआ। डर दोहराने का ना था, रचनात्मक चुनौती से बचने भागने का था। उन्हें होमवर्क नहीं करना था, सरकारी धन उगाह लेना भर था। पूस की रात में थे रघुवीर यादव, जो उनकी गायकी को भुनाने लगे, उनके खिलंदड़ेपन से बहलाने लगे। फलतः कहानी का बड़ा वजनदार हल्कू सचमुच बहुत हल्का हो गया। कफन में पंकज कपूर और किशोर कदम ठीक लग भी रहे थे, जा भी रहे थे, पर उसमें तो दृश्यों और संवादों के नियोजन ही इतने बेतुके हैं कि प्रेमचंद्र की सबसे तेज और क्रांतिकारी कहानी के सारे तार तथा ताने टूट जाती हैं, व्यंग और आहें हताहत हो जाती हैं। ठाकुर का कुआं तो बड़ी देर तक ये कहानी लगती ही नहीं। त्रिलोक जेटली ने लगभग सबसे पहले प्रेमचंद्र को उठाया, 1963 में फिल्म गोदान बनाई। गुलजार से अच्छे वो इस मायने में रहे कि उन्हें ना प्रेमचंद्र को तारने की तमन्ना थी, ना सिनेमा में कोई इतिहास रचने का मुगालता। एक दबी छिपी लालसा भले रही हो कि साहित्य की अमर कृति से फिल्म सफल हो जाएगी, वरना तो साफ साफ व्यावसायिक था उनका इरादा। इसी के चलते उन्होंने पूरा सेलिया माता दीन वाला प्रसंग छोड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मण के मुंह में चमारों से हड्डी डलवाकर और सेलिया को धनिया से गांव में बसाकर सेंसर बोर्ड का कोप भाजन बनने तथा पास हो जाने पर भी दर्शकों के जरिए उन्मादियों से रार मोल लेकर कमाई में बट्टा लगाने में उन्हें कोई रुचि ना थी। उधर जेटली ने राजकुमार को हीरो के रूप में ले लिया होरी के लिए। उन्होंने होरी बनाना ना चाहा और राजकुमार तो सितारा से अभिनेता भी ना बन सके, होरी क्या बनते। शशिकला को बनाया धनिया, उन्होंने कोशिश की पर अपनी छवि को तोड़ ना पाई। आगे की कहानी अगले पॉडकास्ट में जरूर सुनिएगा, प्रेमचंद और सिनेमा के बीच का रिश्ता।